कराते क्लास चल रहा था 27 अक्टूबर 1966 गुरुवार को दूसरे पेज के आगे में बात चल रही थी। बच्चों को समझाया गया है कि 84 जन्म भोग करके कैसे कैसे तुम सुख भोगते भोगते उतरते आए हो। चौरासी जन्मों में जो उतरना हुआ है वो इंद्रियों का भोग करने से उतरना हुआ है। अभी तुम 84 जन्मों की 84 सीढ़ियां चढ़ते हो योग बल के द्वारा। अभी तक तुम 84 जन्म भोग करके बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन गए, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि को तुच्छ बुद्धि कहेंगे और सत्व प्रधान बुद्धि को शुद्ध बुद्धि कहेंगे, स्वच्छ बुद्धि कहेंगे। तो वो ऊंच बुद्धि कहेंगे और वो नीच बुद्धि कहेंगे। जो नीच होते हैं वो ऊंच को नमस्ते करते हैं। ते माने तुमको, नमः माने नमन करते हैं, अर्थात बुद्धि को झुकाते हैं। देखो जो नीच बुद्धि है वो ऊंच बुद्धि को, स्वच्छ बुद्धि को नमन करते हैं ना। जानते हो देवताओं के मंदिर में जाते हैं, देवताएं ऊंचे हैं, नमन करने वाले नीचे हैं। तो अपन को नीच कहलाते हैं और उन मंदिरों में जो देवताएं की जड़ मूर्तियां रखी हैं उनको ऊंच कहलाते हैं। ये तो है ना बराबर बच्चे। अभी ऊंच और नीच किसको भी कोई को पता नहीं। तुम ब्राह्मणों को भी पता नहीं है कौन ऊंचे कौन नीचे है। कभी हम ही सच्चे मुच्चे ऊंचे थे और अब हम ही नीचे बने। परंतु इन बातों का कोई को भी पता नहीं है। अभी ये बाप ने आकर के समझाया है। क्या इंद्रियों का सुख भोगते भोगते नीच बने और अब योग बल से तुम ऊंच बनते हो। तो जरूर है कि जिसने पहले पहले नंबर में आया वो पहला नंबर लिया, और उनको ही पूरे 84 जन्म लेना होगा। तो जरूर वो शक्ति में पहले सतो प्रधान होगा और इस शक्ति के अंत में पीछे तमो प्रधान बनेगा। तो जो ऊंचे पे ऊंचे होंगे सो पहले पहले नंबर से शुरू होंगे। तो ये बच्चों को पक्का हुआ ना कि 84 जन्म मन भी तो सूर्यवंशी ही लेंगे ना। कोई चंद्रवंशी आत्मा इस्लाम वंशी बौद्धी वंशी क्रिश्चियन वंशी तो 84 जन्म नहीं लेंगी ना, वो तो बाद में आते हैं। तो जो बाद में आने वाले हैं वो नंबर बार 84, 83, 82 भी आ गए। बाबा ने समझाया कि सतयुग में जो आवेंगे परंतु 83 जन्म लेंगे तो जरूर इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, 82 जन्म लेंगे तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होंगे। तो अभी तुम समझते हो कि पहले पहले हम क्या थे। हम पहले पहले विश्व के मालिक थे, वहां यथा राजा तथा प्रजा, और वो विश्व के मालिक है। कोई भूख नहीं मरते हैं, वो कोई पतित नालायक बनते हैं क्या? नहीं, उनकी तो महिमा ही देखो कितनी ऊंची है। अभी इस दुनिया में ऐसी कोई की महिमा नहीं हो सकती है। इसकी बात महिमा करें, कोई मनुष्य की कोई महिमा करेंगे क्या? फिर भी उनकी महिमा बैठ कोई करते होंगे करेंगे, और बाप ने तो महिमाएं समझाई है ना। लक्ष्मी नारायण की महिमा नहीं करते, कृष्ण की बैठ करते हैं महिमा। महिमा तो इनकी भी करते हैं बैठकर, इन लक्ष्मी नारायण की, क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो इनको भी कहते हैं। सर्वगुण संपन्न तुला कला संपूर्ण तो इनको कहते हैं ना। और ये समझने की बात है, ये बरोबर 16 कला संपूर्ण है लक्ष्मी नारायण, और फिर कहते भी हैं कि त्रेता में 14 कला संपूर्ण, क्योंकि सतयुग में जो जिस नंबर के नारायण बनते हैं वही त्रेता में जाकर के राम सीता की उस नंबर की गति लेते हैं। अभी तो उनको 14 कला संपूर्ण नहीं कहें। क्योंकि 14 कलाओं में संपूर्णता होती नहीं है, सिर्फ 14 कला। उनको 16 कला संपूर्ण कह देंगे। तो ये अक्षर लगाते हैं ना, 14 कला को संपूर्ण अक्षर पिछाड़ी में नहीं डालेंगे। तो 2 कला कम हो गए, संपूर्ण कहाँ हुए? इसलिए इसमें भी कभी 14 कला बस 14 कला संपूर्ण नहीं, संपूर्ण 16 कला वाले को कहेंगे और वही तुमको लिखना है। ये जो बच्चियां बैठ करके करेक्ट करती है ना, तो वो जांच रखें कि वहां 14 कला संपूर्ण तो नहीं लिखा है। संपूर्ण सिर्फ 16 कला को कहेंगे और वही लिखना होता है, क्योंकि तुम बच्चे अभी 16 कला संपूर्ण बनते हो। तुम किसको कहा जाता है? जो सन्मुख बैठे हुए होते हैं उनको तुम कहा जाता है। इनको तो तुम नहीं कहेंगे, इनको तो कैसे कहा जाता है? क्या ब्रह्मा की आत्मा या ब्रह्मा जैसी जो भी आत्माएं हैं वो तुम बच्चों में प्रवेश करके सन्मुख नहीं सुनती हैं? सुनती हैं या नहीं सुनती हैं? तो वो 16 कला संपूर्ण नहीं बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, वो भी बनेंगे। जो सन्मुख बैठ करके सुनते हैं वो 16 कला संपूर्ण बनते। तो तुम बच्चों को बहुत सहज से सहज अति सहज इनसे कोई भी सहज मार्ग नहीं हो सकता। देखो भगवान से मिलने के लिए भगत कितने चक्कर काटते हैं, भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं। आधा कल्प धक्का खाया, तो ये तुम्हारा पुरुषार्थ तो बहुत सहज है। कितने जन्म का है तुम? कितना जन्म पुरुषार्थ करते हो 16 कला संपूर्ण बनने के लिए? है एक जन्म। तो बाप तो तुम बच्चों के लिए रहम दिल है ना, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है। अपने बच्चे क्यों कहा है? क्योंकि तुम्हारे सिवाय जो सन्मुख बैठ करके सुनते हैं वो तो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरा 16 कला संपूर्ण बनते ही नहीं है। और धर्म वालों को अपना बाप बना लेते हैं। कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तुम तो एक बाप के बच्चे हो, तो बाप को तुम्हारे ऊपर तरस पड़ता है। वो जानते हैं ये मेरे बच्चे तो बेचारे भक्ति मार्ग में धक्का खाए खाए बहुत थक गए होंगे, तब तो उसमें लिखा हुआ है ना, कि भगवान ने द्रौपदी के भी पैर दबाए। अब पैर क्यों दबाए? कि तुम धक्के खाए खाए थक गई हो, तो धक्के खाने वाले तुम बच्चों में एक की बात तो नहीं है ना, एक द्रौपदी की बात है नहीं। देखो बाबा भी आते हैं ना, तो बूढ़ियों को कहते हैं तुम थक गई हो, बहुत थक गई हो, भक्ति मार्ग में धक्का खा करके थक गई। तो ऐसे ऐसे बैठ करके ये बातें बताते, तुम्हारी थकी हुई बुद्धि रूपी पांव को दबाते हैं ना। कोई भी कुछ तो निशानी है ना, ये बाप है ना, बच्चे हैं, तो उन बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे अभी तुम थक गए। अच्छा अभी हम तुम्हारा थकान बहुत जल्दी दूर करते हैं, और तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता। वो जो राम राम कहते रहते थे वो है बिगर तकलीफ, उठते बैठते चलते पाकिट में माला पड़ी रहती। तुम पादरियों को देखो कि उनकी पाकिट में माला पड़ी रहती है, हाथ में लेकर के फेरते रहते। ऐसे जो पक्के भगत होते हैं, परंतु आजकल तो इतने कोई होते नहीं है, वो भी ये जो इनका कुर्ता होता है उनके अंदर माला पड़ी रहती है, उनका हाथ उस माला में रहता है और माला फेरती रहती है। तो तुम देखा नहीं है, क्योंकि इतना तुम्हारा संपर्क बहुतों से तो आया ही नहीं है। और इस बाबा का तो संपर्क सबसे आया है, पादरियों वादरियों से सभी से। ये नर्सें जो होती हैं, इनकी पादरियां ने वो बाइबल ले लेकर के आ करके समझाती हैं कि ये कहाँ क्रिश्चियन बन जावे, तो वो क्रिश्चियन बनाने के लिए आती हैं। दुकानों पर भी समझाने के लिए आ जाती है। तो देखो यहाँ तो वो माला की भी कोई बात नहीं है, तो भक्ति मार्ग में वो माला फिर किस बात की निशानी है? बाप ने जो संगठन बनाया है, जिन आत्मारूपी मणकों को अपने गले की माला बनाया है, ये माला यानी माला फेरना वो तो सबसे सहज है। परंतु ये अंदर में राम 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 अंदर में चलता रहता है। उनके अंदर में राम राम क्यों चलता रहता है? क्योंकि जो आत्माओं का बाप है वो राम वाली आत्मा के थ्रू ये सारा काम कराते हैं। तो राम राम जरूर चलता रहता है, उन भक्तों की बुद्धि में राम राम, मुख में राम राम, वो भी नहीं कहते हैं बाबा को, नहीं, बाबा कहते हैं सिर्फ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि शिव शिव कहो, नहीं, बाबा बाबा कहो। बाबा कहा ही जाता है साकार और निराकार के मिलकर, तो साकार आत्मा हुई राम वाली आत्मा और निराकार शिव बाप, वो आत्माओं का बाप है, बाबा नहीं है। कौन? शिव। बाबा कब बनता है? जब साकार तन में प्रवेश करता है। तो ऐसे नहीं कि शिव शिव कहो, नहीं, बाबा बाबा कहो, ये शिव शिव भी नहीं कहो, सिर्फ बुद्धि से आवाज भी नहीं करो, बुद्धि में अंदर अंदर बाबा की याद आती रहे। क्योंकि तुम बच्चे जानते हो ना कि अब हम आवाज से परे जाने वाले हैं, तो आवाज नहीं करना है, याद करने में आवाज करने की दरकार नहीं है, आवाज से याद करना है या बुद्धि से याद करना है, एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ये आवाज से राम राम कहो, शिव शिव कहो या बाबा बाबा कहो, नहीं, अंदर में याद कर शांति से, कि जानते हैं कि हम आत्मा हैं और वो हमारा बाबा है, हैं? ब्रह्मा के तन में बैठ बोल रहा है तो वो कह के दूर क्यों कर दिया? हाँ, तो जिस समय ब्रह्मा के तन में बोल रहे थे तो वो ब्रह्मा बाबा नहीं है जिसको याद करना है, इसको याद करना है, शिव बाबा को याद करना है। ब्रह्मा बाबा को याद करने से कुछ नहीं मिलेगा, शिव बाबा को याद करने से प्राप्ति होगी। तो बाबा ने कहा है मुझे याद करते रहना, तो तुम जो पतित बन गए हो, जो तमो प्रधान बन गई आत्मा है, वो तमो प्रधान आत्मा नीची स्टेज में उड़ नहीं सकती है। तो ये तुम्हारी पापों की खाद निकल जावे, क्योंकि पहले आए थे तो तुम उस समय सतो प्रधान थे और अभी तुम बहुत पुराने हो गए तो तुम तमो प्रधान बन गए। तो जो कोई भी परमधाम बाप के घर से पहले पहले आते हैं वो सतो प्रधान होते हैं। यहाँ आकर के वो सभी तमो प्रधान बन करके यहाँ नीचे पड़ जाते हैं, परंतु परम धाम से नीचे आने वाले कोई भी बीच में वापस नहीं जा सकते। कोई भी आत्मा एक भी वापस नहीं जा सकती। इसलिए फिर बाप सहजते सहज बताते हैं कि काम करते घर में रहते एक तो पवित्र जरूर बनना है, अपवित्र नहीं बनना है, मना मूत पलीती नहीं बनना है, मूत पलीती बनते हैं तो पतित बन जाती है, शक्ति नीचे गिर जाती है, पतित हो जाती है। तो वो तो कमल फूल के समान बिल्कुल ही अच्छी तरह से तुमको समझाया हुआ है। क्या कि सन्यासियों मुआफिक जो घर गृहस्थ के कीचड़ में रहने वाली दुनिया है उसको छोड़ के भी नहीं भागना है, परंतु तो घर गृहस्थ के कीचड़ में रहते हुए ही बुद्धि से ऊपर आम रहना। इंद्रियां तो अपना काम करेंगी, शरीर है इस पतित दुनिया में पड़ा हुआ है, परंतु बुद्धि तो ऊपर जा सकती है। तो क्या करो है, कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि से उपराम हो जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल के समान तुमको पवित्र रहना है, जैसे कमल का फूल कीचड़ के अंदर नहीं रहता, उसमें कीचड़ की एक बूंद भी नहीं फैलती, क्योंकि ये कमल का फूल पानी में रहता है। कौन सा पानी है? तुम्हारे लिए है ज्ञान जल का पानी। तो इससे जो इसे ज्ञान जल के पानी में जिनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा रहती है वो फिर उपराम हो सकते हैं। कमल फूल पानी में रहता है ना, तो तुम भी कहाँ रहो है? बुद्धि सदैव ज्ञान जल में रहे। तो देखो ये कमल फूल की भी बड़ी भारी पंचायत है। इसमें भी बहुत चीजें पैदा होती हैं। कमल की डंडी है, देवताओं पर चढ़ाने के लिए फूल है, उस फूल में कमल गत्ता निकलता है जिससे मखाना जैसी खीर बनती है, और जड़ों से क्या कहते हैं उसे, जो बचीरा निकलता है, हिंदी में कहते हैं कमल फूल का जड़ बचीरा, उससे सब्जी तैयार होती है। तो कमल फूल से बहुत चीजें पैदा होती है। तो कहेंगे ये गृहस्थी है, ये कमल का फूल बड़ी भारी गृहस्थी है। देखो उनको बच्चे भी बहुत पैदा होते हैं। एक कमल के फूल में कितने बीज होते हैं? ये कमल फूल को शतदल कहा जाता है। नीचे में उनके वो भी नीचे में है और वो जड़ भी काम में आती है। तो कमल फूल की बहुत चीजें काम में आती हैं। तो बाबा बोलता है जैसे वो गृहस्थी है, ये कमल फूल के समान ऊपर में रहते हैं। उन फूलों को कीचड़ का स्पर्श नहीं होता है, ऐसे ही कीचड़ की दुनिया में रहते हुए तन और इंद्रियां बल कीचड़ में रहे, परंतु बुद्धि उस कीचड़ से स्पर्श छूनी नहीं चाहिए। उस कमल फूल के समान तुम भी इस विषय सागर की दुनिया में रहते हुए पवित्र रह सकते हो। ये तो बहुत अच्छा समझाने देते हैं बच्चों को, क्योंकि भाई ये सारी दुनिया विषय सागर है। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि बरोबर ये विषय वैतरणी नदी है, इसमें रहते हुए ये सागर भी है ना, है विषय सागर। वो नदी भी नहीं है, पर वो एक है सागर एकदम। विषय विचारों का सागर है। बाकी सागर में कोई कमल फूल नहीं होते हैं, नदियों में होते हैं। क्या सागर कौन है? है? और सूर्य कौन है? शिव है ज्ञान सूर्य, और सागर तो धरणी से लिपटा हुआ है या धरणी से दूर है? सूर्य तो दूर है, नदियां सागर से ही निकलती हैं और सागर में ही जाकर के समा जाती हैं। तो देखो, ये कमल के फूल मीठे जल में होते हैं, सागर के खारे पानी में नहीं होते हैं। तो कौन है सागर? ये ज्ञान सागर भी एक ही है। कौन हुआ? जिसका पानी खारा होता है, ज्ञान जल भी खारा। तो वो बातें बाप बैठ करके अच्छी तरह समझाते हैं। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप समझाते हैं कि सागर कौन है जो खारा है। कहीं कहीं मीठा पानी भी होता है, मोस्टली खारा है। क्या थोड़े से बच्चे हैं रुद्रमाला के मण के, उनको बाप का ज्ञान जल मीठा लगता है, बाकी सारी दुनिया के लिए मीठा है या खारा है? खारा है। पहले पहले चंद्रवंशियों के लिए खारा है, फिर सारी दुनिया के जो भी धर्मवंशी हैं सब के लिए खारा है। तो बाप बैठ करके इन बातों को अच्छी तरह से समझाते हैं। ज्ञान सागर कौन है? है? और ज्ञान सूर्य कौन है? शिव है ज्ञान सूर्य, और राम वाली आत्मा है ज्ञान का सागर है। परंतु उस सागर के खारे जल में कमल फूल तैयार नहीं होते। जब नदियां निकलती हैं, गंगा नदी अंत में निकलती है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का नारा, भारत माता निकलती है, यमुना नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्रा निकलती है, तो मीठा जल देती है। ये नदियाँ सब निकलती कहाँ से हैं? निकलती तो सागर से ही है। सागर भले खा रहा है लेकिन नदियाँ मीठा जल देती हैं। तो बाप ये बातें समझाने के लिए तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ याद करने की तकलीफ है। वो तो जरूर मिलनी चाहिए, क्यों याद करने में ये तकलीफ क्यों मिलनी चाहिए? याद को योग कहा जाता है, याद को योग कहा जाता है। और भोग तुमने 84 जन्म भोगे, 84 जन्म भोगे हैं, तो उन भोग भोगने में नीचे उतरने में तुमको तकलीफ हुई क्या? सुख भोगने में तकलीफ होती है क्या? नहीं। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं ना, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वहां से नीचे सरकते हैं, नीचे आ जाते हैं सरक, तो सरकने में उनको कोई तकलीफ होती है? चढ़ने में तकलीफ होती है। तो ये भी तुम्हारी ऊंची चढ़ाई है क्या? याद योग, वो नीचे उतरना है भोग और ये ऊपर चढ़ना है योग। नहीं तो अपन से हमेशा पूछो कि हम जो कहते हैं पतित से पावन बने, वो पतित से पावन नदियों वदियों से तो नहीं बने हैं ना? नदियां पतित से पावन बनाती हैं क्या? है नदियां तो नहीं बनाती, फिर कौन बनाता है? याद उनको कहते हैं, जाते हैं नदियों में, परंतु याद उनको करते हैं, इनको है जिनको ऊंचे पहाड़ पर दिखाते हैं, कैलाश पर्वत पर कहते हैं हे पतित पावन आओ। पतित पावन राधा कृष्ण को कहते हैं या राम सीता को कहते हैं? राम सीता को पतित पावन कहते। तो देखो, जाते हैं वहां नदियों में स्नान करने और याद पतित पावन को करते हैं, परंतु समझ इतनी भी नहीं है कि पतित से पावन बनाने वाली नदियां हैं या पतित पावन बाप है। बाप है पतित पावन, वो गुरु लोग भी कहते हैं कि ये भी पतित पावनी है नदियां, तो कहते हैं ना नदियां पतित पावनी है। ये गुरु लोग सभी कितने बेसमझ हैं, बेसमझ हैं तभी तो इतना तमो प्रधान को तो बेसमझ कहेंगे ना बच्ची, सतो प्रधान को समझदार। तो उनकी भेंट है, देखो ये सामने भेंट है ना, नदियों की और पतित पावन बाप जी। अभी जो तुम्हारे सामने बैठे हैं, तो तुम्हारे सामने भी पतित पावन बाप और नदियों की भेंट है। जड़ नदियों की या चैतन्य नदियों की? चैतन्य नदियों की भेंट है। ये देख कर करके बंदर खाते हैं, और तुमको भी बंदर खाना है कि तुम भी तो महाराज कुमार बनते हो ना? वो महाराज कुमार पोत्रे पोत्रियां होते हैं ना? ये ब्रह्मा बच्चा हुआ, सत्यु में क्या बनकर पैदा होगा? बच्चा बनकर पैदा होगा ना? और तुम हो बाप के पुत्र। जैसे वो निजाम बादशाह के बच्चे होते हैं ना, तो उन बच्चों को साहबजादे कहा जाता है। तुम भी तो साहबजादे हो ना? बपोत्री भी हो तो और भी आखरीन में राजाई तो लेंगी ना? उस राजाई के लिए तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना? तो तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए, और पौत्रों को तो और भी खुशी होती है, क्योंकि पौत्रों को डाढ़े का वर्षा मिलता है। बाप अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन बच्चे को डाढ़े का वर्षा जरूर मिलता है। तो तुम्हारा तो हक है, पूरा हक है। बाबा द्वारा हमारा तो हक है, परंतु यहाँ हक है जो तुम बच्चों को समझाया। क्या तुम अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो? तो तुम्हारा बाप कौन हुआ? ब्रह्मा। तुम्हारा बाप कौन हुआ? ब्रह्मा। भले पहले तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में थे, अब तुमने जाना है कि ब्रह्मा का भी कोई बाप था या नहीं था। यदि के आदि में ब्रह्मा को भी जन्म देने वाला कोई माँ बाप थे, जो माँ बाप यहाँ ब्रह्मा को भी स्मृति दिलाते हैं कि तुम इस जन्म में सफेद पोषधारी ब्रह्मा बनते हो, और अगले जन्म में तुमको राधा के स्वरूपी बच्चा बनना है, तो बताओ ब्रह्मा तुम्हारा बाप है? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, तो ब्रह्मा का बाप तुम्हारा डाढ़ा हुआ ना? तुम डाढ़े के बच्चे हुए ना? तब थे है? वो डाढ़े कब हुए? यज्ञ के आदि में। तुम बच्चे भी यज्ञ के आदि में थे क्या? यज्ञ के आदि में तुम बच्चे थे। वो राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में थी ना, जिसके द्वारा ब्रह्मा का भी जन्म हुआ। ब्रह्मा ने भी अपन को पहचाना ना कि मेरा पार्ट ब्रह्मा का है। ब्रह्मा बच्चे ने भी जाना ना तो ब्रह्मा का भी बाप वो हुआ और तुम्हारा वो दादा हुआ, तो तुमको वर्षा जरूर मिलता है, इससे दादे से वर्षा मिलता है। बाप ब्रह्मा तुमको वर्षा दे या न दे, लेकिन दादे का वर्षा तुमको जरूर मिलता है। तो बोला तुम्हारा हक है, तुम बच्चों को समझाया है कि पुरुषार्थ करके तुम ये हक ले सकते हो। क्या जैसे राम वाली आत्मा को हक में धनुष और बाण मिल गया, ज्ञान के बाण मिले ना, बाण रखने के लिए बुद्ध रूपी तरकस मिला ना, ऐसे तुम बच्चों को भी ज्ञान के बाण मिल रहे हैं। इन ज्ञान के बाणों को तुम बुद्ध रूपी तरकस में रखते हो और पुरुषार्थ रूपी तुम्हारा धनुष है। क्या इन बाणों से इस दुनिया के जो भी रावण संप्रदाय वाले हैं, बाप के बच्चे नहीं हैं, औरों को अपना बाप बनाने वाले हैं, कन्वर्ट होने वाले हैं, आज कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं और कल कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पलटने वालों को, दोगुलों को तुम ज्ञान बाणों से घायल करते रहते हैं। ऐसे करते करते रावण संप्रदाय खलास हो जाएगा और तुमको नई दुनिया की बात सही मिल जाती। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। क्या बाप भी विश्व का मालिक और बाप के बच्चे भी क्या कहेंगे, हम विश्व के मालिक। तो हक है हिस्सा विस्सा लेने से, हिस्सा करके कायदे का, वहां वायदा है यहां नहीं। क्या यहां हिस्सा इस जन्म में नहीं लेना है, वहां लेना है। कहां जो बाप आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं, नई राजधानी बनाते हैं, उस नई राजधानी में तुमको वहां हिस्सा लेना। ऐसे नहीं यहां हिस्सा लेना शुरू कर दो। क्या जैसे कुमार का दादी कहती थी, ये ब्रह्मा की गद्दी नशीन हम बनेंगे। तो जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो कौन गद्दी पर बैठ गया? तो यहाँ गद्दी लेनी है क्या? कहाँ लेनी है? ये नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है? पुरानी दुनिया है। यहाँ तो तुमको सेवा करनी है, सेवाधारी बनना है और वहां नई दुनिया में तुम इसकी प्रारब्ध पाते हो। यहाँ कोई सुख नहीं लेना है। क्या जो कहते हैं बहुत यहाँ हमको भगवान के बच्चे बने तो हमको दुख क्यों मिलता है? अरे भगवान इस दुनिया की प्राप्ति कराने आया है कि भविष्य 84 जन्मों की प्राप्ति कराने आया है? तुम्हारी आत्मा को प्राप्ति कराने आया है या तुम्हारे शरीर को प्राप्ति कराने आया है? आत्मा को, तो आत्मा का कनेक्शन भविष्य के 84 जन्मों से, और शरीर का कनेक्शन पूर्व जन्मों से है। पूर्व जन्मों में जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उनका फल इस शरीर के द्वारा हमको यहाँ भोगना है। तो ऐसे नहीं कहना है कि हम भगवान बाप के बच्चे बने तो दुखी क्यों होते हैं। ये दुख जो है हमारे पूर्व जन्मों का फल है, या भगवान के बच्चे बने हैं तब मिलता है, पूर्व जन्मों का फल है। तो यहाँ तुम्हारा पुरुषार्थ है, भविष्य जन्म में तुमको इसी संगम युग में भविष्य जन्म भी है, और इसी जन्म में ये पुराना जन्म भी है। तो पुरुषार्थ किसको करना है, शरीर को या आत्मा को? आत्मा को पुरुषार्थ करना होता है। तो आत्मा को पुरुषार्थ भी क्यों करना होता है? कन्या को भी जो आत्मा है वो भी पुरुषार्थ करेगी, तो उनकी भी जो आत्मा है पुरुषार्थ करेगी। कन्या के पुरुषार्थ में और बच्चे के पुरुषार्थ में भेद रहता है ना। बाप का वर्षा किसको मिलता है, कन्या को मिलता है या बच्चे को मिलता है? है ये तो आज की गवर्नमेंट में, अब से 100 साल पहले 50-60 साल पहले क्या था, बच्चों को वर्षा मिलता आया। तो तुम शिव बाप के बच्चे आत्मा हो या ब्रह्मा कुमारी हो, है पहले क्या हो, है पहले क्या हो, आत्मा हो या ब्रह्मा की कुमारी हो, कन्या हो, क्या हो? हम आत्मा रूपी बच्चे हैं, तो बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है ना, है? राजाई का वर्षा किसको मिलता है, राजा के बच्चे को मिलता है या बच्ची को मिलता है? बच्चे को मिलता है। तो देखो, राजा स्वाधीन होता है, राजा स्वाधीन होता है, और रानी राजा के अधीन होती है। तो तुम अधीनता का वर्षा पाते हो बाप से, या स्वाधीनता का राजाई का वर्षा पाते हो? हम राजाई का वर्षा पाते हैं बाप से। वो ब्रह्मा कुमारी बड़े राधा बनेगी है, लेकिन वो स्वाधीन बनेगी या कोई के अधीन बनेगी? ज्ञान लेने के लिए लक्ष्मी कहाँ से ज्ञान धन लाएगी? नारायण से लाएगी। तो ज्ञान धन लेने के लिए अधीन हुई ना। तो देखो, बच्ची को वर्षा नहीं मिलता है, तुम बच्चों को ये ज्ञान धन का वर्षा मिल रहा है। जो एडवांस में आए हुए हैं वो बाप के बच्चे हैं या बच्चियां हैं? ये सब रुद्रमाला के माँ के सब बच्चे हैं, कोई भी बच्ची नहीं। अच्छा, यहाँ तो बाप का वर्षा सभी आत्माओं को मिलता है, क्या? बाप का वर्षा आत्माओं को मिलता है, माना जो पुरुषार्थ करके पक्का पक्का आत्मा बनते हैं, देवान नहीं रहता है, उन सूर्यवंशियों को वर्षा मिलता है। जिनमें देवान रह जाता है वो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं,
जैसे सतयुग के दूसरे जन्म में कितनी कला कम हो जाएगी, चौथाई कला कम हो जाएगी, तो जो सतयुग के दूसरे जन्म में आवेंगे परम धाम से, वो संपूर्ण आत्मा आते हैं या चौथाई कला कम आते हैं? चौथाई कला कम आते हैं, तो पक्की आत्मा है या कच्ची आत्मा है? ये कच्ची आत्मा कहाँ बने? संगम युग में बने। बाप को पूरा नहीं पहचाना, दूसरों की बातें सुनने लग पड़े, दूसरों को बाप बना लिया, तो आत्मा अधूरी रह गई। इसलिए बाप बोलते हैं कि ज्ञान भी एक से सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो विभिचारी ज्ञान हो जाएगा। अगर विभिचारी ज्ञान हो जाता है तो विभिचारी धर्मों में कन्वर्ट होना पड़ेगा क्या, और कन्वर्ट होकर के फिर दूसरे धर्मों में चले जाएंगे। स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा है, क्योंकि जो दूसरे का धर्म है वो बहुत तकलीफ देने वाला है। जो कन्वर्ट करके अपने धर्म में ले जाते हैं वो फिर दास दासी बना करके रखते हैं, तो दास दासियों को दुख होगा या सुख होगा? ओम शांति।